हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये सुनकर जूली को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वेदांत अपने बिजनेस के पीछे कितना पागल है ये उसे बखूबी पता था। उसने यस बॉस बोलते हुए कॉल कट कर दिया। वेदांत भी फिर मुड़कर विहा की तरफ देखा, जो अब और भी ज्यादा रोते हुए उसे घूर रही थी, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। वेदांत तेज कदमों से उसके पास गया और फिर गुस्से से बोल उठा, यहाँ से निकलो। विहा लड़खड़ाते कदमों से उठकर बेड से दूर हो गई और फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, रहो आप इतने बड़े बेड पर अकेले ही रहो, मैं चली जाऊंगी, मैं कहीं अपने घर वापस चली जाऊंगी। अब तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है, मुझे तो लगा था आप सिंगल हो और आपकी गर्लफ्रेंड थी, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं कभी दीदी को फोर्स नहीं करती कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब उनको भी मैं गलत लगती हूँ कि मैंने आपको अमीर देखकर आपसे शादी कर ली, लेकिन मुझे सच में आप बहुत ज्यादा पसंद हो और आपकी कंपनी में जॉब करना कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था, और आज देखो मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे होने के बावजूद किसी और ही लड़की से बातें कर रहे हो और इस शादी में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पल लगे थे वेदांत को विहा की इस एक और बचकानी बात को समझने के लिए, लेकिन उसे जैसे ही समझ आया कि विहा जूली को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही है, तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगी विहा को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए। विहा अब रोते हुए अपने हाथ में लगी मेहंदी को देख रही थी, जिसमें बड़ी खूबसूरती से उसने वेदांत का नाम लिखवाया था। उसे ऐसा रोता देख वेदांत का मन किया उसे एक बार बता दे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी सेक्रेटरी है, पर फिर भी वेदांत अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो विहा से तेज आवाज में बोला, हाँ, और हम दोनों 3 साल से साथ हैं, उसके बावजूद मैंने उससे शादी नहीं की, हम लिविंग में रहते हैं, तो तुम मुझसे दूरी रहना। विहा ने उभकियां भरते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा, आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? वेदांत का मन किया अपना सर दीवार पर दे मारे, ये लड़की कैसा सवाल कर रही है, उसे डांटने की बजाय उससे पूछ रही है कि उससे शादी क्यों नहीं कर ली। वेदांत ने गुस्से से कहा, इससे तुम्हें क्या, मैं उससे शादी करूं या ना करूं, हो सकता है हमारा ब्रेकअप हो जाए उसके बाद। विहा ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसे तिसी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर 3 साल से साथ हैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा क्या है, मुझे तो लव एट फर्स्ट डिसाइड हुआ था, अगर आप मुझे अटेंशन नहीं देंगे तो शायद वो भी खत्म हो जाए धीरे धीरे, लेकिन जो लड़की आपसे 3 साल से प्यार करती है उसके साथ आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपको उन्हीं से शादी करनी चाहिए थी, मुझसे नहीं। फिर विहा ने एक नज़र अपने कपड़ों को देखकर कहा, अब मेरी नींद भी उड़ गई है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। इतना बोलकर वो अपनी नज़रें घुमाकर वार्डरोब ढूंढने लगी, जो कुछ ही देर में उसे दिखाई दे चुका था। वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम के अंदर चली गई। वही वेदांत कमरे के बीचों बीच सुन खड़ा था। विहा, जो अभी अभी लेक्चर सुनकर गई थी, उसका मतलब जानने का प्रयत्न कर रहा था, जो नाकाम होता नजर आ रहा था। वेदांत ने अपने बालों में दोनों हाथ घुमाते हुए झुंझलाकर कहा, क्या लड़की है, एक दिन में मेरे दिमाग का दही कर दिया है, इसे ये नहीं पता अगर मैं किसी और से शादी की तो इसे मुझे डाइवोर्स देना पड़ेगा, क्या इसकी अकल घास चढ़ने गई है। फिर वेदांत कुछ सोचते हुए अपने क्लोज़ेट में चला गया ताकि वो भी कपड़े चेंज कर सके। कपड़े चेंज करते वक्त वेदांत सोच रहा था, अच्छा हुआ रुहान की शादी विहा के साथ नहीं हुई, वरना दोनों एक जैसे हो जाते, कितनी केयरलेस विहा है। उतना ही उसका भाई था और विहा को देखकर लग रहा था वो रुहान से भी ज्यादा इमेच्योर है। फिर कुछ सोचकर वेदांत ने आंखें बंद करते हुए कहा, उसकी उम्र भी तो 20 साल है, ऊपर से घर की छोटी बेटी, लाडली बेटी, जिसको सर पर चढ़ा रखा होगा, जैसे रुहान को इस फैमिली ने चढ़ा रखा है। कुछ देर बाद विहा एक गुलाबी रंग का सूट सलवार पहने बाथरूम से बाहर आई। बाहर आते ही उसने जैसे ही खाली रूम को देखा, अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले गए, कितने बेशर्म आदमी है वो। वो कुछ और बोल पाती उससे पहले क्लोज़ेट के अंदर से वेदांत बाहर आया और उसे देखकर आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुम अकेले भी बात करती हो। विहा ने चेहरा घुमाकर वेदांत की तरफ देखा और वेदांत ने जैसे ही उसका छोटा सा लाल चेहरा देखा, जो गर्म पानी से नहाने की वजह से हद से ज्यादा लाल हो चुका था, उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसका मन किया वो विहा के पास जाकर एक बार उसकी सॉफ्ट स्किन को छू कर देखें, पर उसने अपने मन को मारते हुए धीरे से कहा, वो रहा सोफा, सो जाओ वहाँ पर। वीहा ने मुंह बनाया और सोफे पर जाकर लेट गई। उसने अपने मन में कहा, क्या मुझे इस बारे में मामा पापा से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर वीहा ने अचानक ही अनाही के बारे में सोचते हुए कहा, हर बार ही मेरे हर कांड पर दीदी मुझे सजेशन देती है, ये चीज भी मैं उन्हीं से डिस्कस करूंगी, उनके पास जरूर इसका कोई सोल्यूशन होगा। अनाही का ख्याल आते ही वीहा की आधी चिंता दूर हो चुकी थी और वो आराम से आंखें बंद करके सो गई। पर उसकी वजह से वेदांत की नींद जरूर हराम हो चुकी थी। वो सोच रहा था, क्या सच में वीहा कल ही अपनी फैमिली वालों के पास वापस चली जाएगी। पर अफसोस, वो ये सवाल वीहा से नहीं पूछ सकता था। थक हार कर वो भी सो गया। रुहान का कमरा। रुहान जिस कमरे में था वो पूरी तरीके से धुएं से भरा हुआ था और वहाँ बस आंखें बंद किए अब लगभग पांचवी सिगरेट खत्म करने वाला था। वहीं बाहर अनाही, जो अपने लिए कम्फर्टे ढूंढ रही थी, उसने जैसे ही उसे कमरे से इतना धुआं निकलता देखा, वो एकदम से घबरा गई और तेज कदमों से चलती हुई उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा एक बार नॉक करते हुए कहा, भगवान जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उसे पता था दरवाजा खुला है, लेकिन फिर भी रुहान की परमिशन लेना जरूरी है। थोड़ी देर पहले ही रुहान ने उसे लेक्चर दिया था कि उसकी चीजों में इंटरफियर ना करे। रुहान ने जैसे ही अनाही की आवाज़ सुनी, उसने बिल्कुल किसी शैतान की तरह हंसते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, ही सुहागरात मनानी है क्या मेरे साथ। अनाही ने एक पल के लिए अपने होठों को भींचा और फिर धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इतना धुआं क्यों हो रखा है यहाँ, कुछ हुआ तो नहीं है ना। रुहान ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, जाकर सो जाइए। अनाही का मन नहीं किया कि वो बिना रुहान को एक बार देखे सोने चली जाए। उसने दो कदम कमरे के अंदर रखे और सामने रुहान को शर्टलेस सिगरेट पीते देखा। उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे से कहा, इतनी सिगरेट कौन पीता है, ये सब कुछ हेल्थ के लिए। रुहान ने वो सिगरेट फेंकते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ये हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे किडनी फेल हो सकती है और पता नहीं क्या क्या फलाना धिमकाना हो सकता है। मुझे सब पता है मैडम जी, आपको इसके लिए लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप जाकर सो जाइए। अनाही को समझ नहीं आया वो रुहान के इस बचपने पर क्या जवाब दें। फिर भी वो तेज कदमों से वहाँ से बाहर निकल आई और फिर कम्फर्टर हाथ में लिए बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, मैं इसके लिए मम्मी जी से तो मदद मांग ही सकती हूँ, मैं एक दिन जरूर आपका दिल जीत लूँगी। इतना बोलकर अनाही फिर बाहर सोफे पर जाकर लेट गई। वो रिमझिम बारिश को देख रही थी जो बिल्कुल धीमी हो चुकी थी, जैसे किसी भी वक्त रुक जाएगी। वही रुहान ने जब कुछ पल खामोशी महसूस की तो अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर रुहान ने फिर फीकी सी स्माइल के साथ कहा, बस इतना ही कैरिंग बनने का नाटक करना था मैडम जी को, मुझे तो लगा था थोड़ी देर और बहस करेगी।
उसने इतना ही कहा था कि उसके कानों में हल्की सी आवाज आई। वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी प्यारी बिल्ली की थी। मियाओ मियाओ करती हुई एक सफ़ेद बिल्ली रुहान की टेबल पर आ बैठी। उसे देखकर रुहान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो सुगर बेबी, हाउ आर यू, कैसा गया पूरा दिन अपने सुगर डैडी के बिना। उस बिल्ली के मुलायम बालों के साथ खेलते हुए रुहान मन ही मन अफसोस कर रहा था अपनी आँखें न खोलने का। उसने एक और मौका गंवा दिया अनाही को देखने का।